अच्छे प्रश्न हैं मेरे पास, एक एक करके सब प्रश्न सुना दें। कर्तव्य से योग की प्राप्ति क्या संभव है तथा कर्तव्य करने के लिए किन किन तथ्यों का आवश्यक रूप से पालन अनिवार्य है, जिसे आप विवेचन करें। किससे विश्वास भरोसे है कैसे पता चले, मेरा विश्वास किसमें है, मैं किसके भरोसे हूँ, आप बताइए मुझसे। मुझे दीदी मूक सत्संग में बैठे हुए काल में अभ्यास वश अगर अपने इस मंत्र का स्मरण होने लगे अथवा अपने इष्ट का श्री विग्रह सामने आ जावे तो उस क्षण क्या करना चाहिए, कृपया इस समस्या का समाधान करें। प्रश्न, असाधन क्या है, असाधन के त्याग में साधन की अभिव्यक्ति है, कृपया दृष्टांत सहित इसका स्पष्टीकरण कीजिए। साधक के लिए असाधन का त्याग या साधन का ग्रहण, इनमें से कौन अधिक महत्व का है, उसे कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। साधन शब्द प्रयत्न का द्योतक है, फिर साधक को अप्रयत्न होने का उपदेश क्यों। उजमिया माता जी साधक प्रणाम। मन और विषय त्रिगुणात्मक होने के कारण ऐसे मिले हुए हैं कि इनका पृथक होना नितांत कठिन है। विषय वासनाएं मन में ओतप्रोत हैं और मन समाया हुआ है विषयों में। जब तक इनकी पृथकता न हो तब तक जीवों को सुख शांति मिलनी क्यों कर संभव है। अतः कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि मन विषयों से पृथक कैसे हो। यदि भौतिक अभाव के कारण जो मन के अंदर मूढ़ता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अथवा राग द्वेष आदि है, अतः यह भौतिक अव्यवस्था के कारण जो अभाव है उसका अभाव कैसे हो। श्री स्वामी जी महाराज ने एक स्थल पर जीवन दर्शन में लिखा है सूत्र रूप में कि सुख का भोगी दुख से नहीं बच सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ठीक है, सुनाई दे रहा है। सब प्रश्नों के प्रश्नकर्ता मौजूद हैं। स्वामी जी महाराज ने एक स्थल पर कहा है सुख का भोगी दुख से नहीं बच सकता, प्रश्नकर्ता है यहाँ। तो इसको मैं स्पष्ट करूंगी, मैं प्रमाणित करूंगी कि आपका अपना जीवन इसका प्रमाण है। जिन जिन अंशों में सुख लिया है और सुख लेना चाहते हैं तो उन अंशों में कभी दुख मिला कि नहीं मिला, मिला ना, तो मुझसे प्रमाण क्यों मांगते हैं भाई। संत की वाणी प्रमाणित तो हो गई कि जो भी कोई किसी प्रकार का सुख लेना पसंद करेगा उसको दुख भोग नहीं पड़ेगा। उदाहरण दे दूं मैं, आप स्वस्थ कराना चाहते हैं तो उदाहरण ये है कि शरीरों की सहायता से सुख लेते हैं हम। सब प्रकार का सुख शरीरों की सहायता से ही संभव होता है, तो जो लोग सुख भोगते हैं शरीर के माध्यम से उनको शारीरिक रोग, शारीरिक वृद्धावस्था और शरीर के नाश का नाम जो मृत्यु है, तो इनका दुख सहन करना पड़ता है कि नहीं। रोग वृद्धावस्था और मृत्यु, इन तीनों की पीड़ा से सुख भोगने वाला बच सकता है, नहीं बच सकता है। तो प्रमाणित हो गया कि सुख का भोगी दुख से नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए दुख के भोगी ही बने रहे। इसका अर्थ ये है कि सुख भोगना बंद कर दें और देह की पराधीनता मिट जाए तो दुख का दर्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि जिन जिन महापुरुषों ने विचार के आधार पर शरीरों से असंगता प्राप्त कर ली और जिन महापुरुषों ने विश्वास के आधार पर प्रभु से आत्मीयता प्राप्त कर लिया, तो जिन्होंने ऐसा कर लिया उनके सामने रोग और मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं आया। आप कहेंगे कि अमर हो गए, तो शरीर अमर नहीं हो गया, वे स्वयं प्रेम स्वरूप होकर के अमर हो गए और उस प्रेम रस में उनको इतना आनंद था कि कहाँ नाड़ी छूट रही है, कहाँ हृदय गति बंद हो रही है, कहाँ शरीर ठंडा हो रहा है, उनको पता नहीं चला। तो शरीर का नाश हम लोग नहीं रोक सकते हैं, शरीर के नाश के भय का नाश कर सकते हैं। समझ में आया? कर्तव्य से योग की प्राप्ति क्या संभव है? तो अब तक जो आपने कर्तव्य विज्ञान सुना मानव सेवा संघ का, और योग की बड़ी ही प्रामाणिक पुस्तिका है पातंजलि योग सूत्र, सूत्र है कि शास्त्र है क्या है वो, तो महर्षि पातंजलि ने जो योग के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने भी चर्चा की है कि कार्य कुशलता योग है। अगर आप शास्त्रीय बातों का आधार लेते होंगे तो महर्षि पतंजलि का वाक्य सुन लीजिए, पढ़ लीजिएगा, और मानव सेवा संघी है तो संघता सिद्धांत सुन लीजिए, और मानस के प्रेमी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन याद कर लीजिए, कर्म से विरति लिखाए उन्होंने। तो मनुष्य के जीवन में कर्तव्य की प्रधानता है, और सचमुच जो कर्तव्य निष्ठ हो जाता है उसमें शांत रहने की क्षमता पैदा हो जाती है। आप कहते हैं कि संभव है, तो मैं कहती हूँ कि संभव है, और कर्तव्य करने के लिए किन किन तथ्यों का आवश्यक रूप से पालन अनिवार्य है, तो मानव सेवा संघ ने चार तथ्य बताए कर्तव्य के विज्ञान में। एक तो ये बताया कि लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करो, दूसरा ये बताया कि भाव की पवित्रता रखो, और तीसरा ये बताया कि फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करो, और चौथा ये बताया कि पूरी शक्ति लगाकर ठीक विधि से करो। तो विधि पूर्वक काम करना, पवित्र भाव से काम करना, निष्कामता पूर्वक काम करना, और लक्ष्य पर दृष्टि रखकर काम करना, इन चार बातों का पालन करते हुए जो लोग कर्तव्य अपना निभाते हैं उनको कर्तव्य के अंत में स्वतः अंदर से शांति अनुभव में आती है, और उस शांति में वे स्थित होकर योगवित हो जाते हैं। तो पक्की बात है। प्रश्नकर्ता में और कोई संदेह पैदा होता हो तो बताएं। किसका प्रश्न है? बोलो। संतोष हुआ कि और कुछ जानना चाहते हो? टाइप करने बैठो तो जो जो शब्द जिस ढंग से करना है उसके बदले में उल्टे पलटे अक्षर के बटन दबाते रहो, ये गलत विधि है। खेती करने चलो तो जिस मौसम में जिस समय पर जिस ढंग से खेती की सफाई बीज डालना चाहिए उसका उल्टा सीधा करते रहो तो ये गलत ढंग है, और ठीक समय पर पूरा श्रम लगाकर ठीक तरह से उसका संपादन करो तो वो सही विधि है। तो विधि तो हर जगह ठीक तरह से काम करने की है ही है, तो जो काम जिस विधि से करना चाहिए उसको ठीक विधि करते हैं। आपकी पवित्रता का कर्तव्य से बड़ा घना संबंध है, और वो क्या है कि हरेक काम को करने में भाव की पवित्रता सुरक्षित रखो। इसका अर्थ यह है कि काम करते समय इस बात का ध्यान रखो कि मेरे इस कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा। कलकपट वाली बात तो तुम्हारी व्यक्तिगत हो गई, निष्छल होकर के निष्कपट होकर करोगे, लेकिन काम का संबंध हमेशा समाज से होता है। ठीक है ना। जैसे मैं बैठ करके बोल रही हूँ तो इस बोलने की जो क्रिया है इसका संबंध मेरे व्यक्तिगत से तो नहीं है। अकेले आदमी अपने को क्या बोलेगा। तो बोलने की जो क्रिया है उसका संबंध सारे समूह से है। हॉल में सत्संग होगा, कल से यहाँ हम लोग बैठेंगे तो इसकी सफाई करनी है, इसकी बिछाई करनी है, मामूली सा काम है ना। तो इस काम का संबंध है सफाई और बिछाई करने वाले के व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, समूह से है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग बैठेंगे, सत्संग होगा तो तुम देखोगे कि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक कार्य का संबंध है अन्य व्यक्तियों से होता है, शरीरों से होता है। तो इसलिए मानव सेवा संघ ने नियम बनाया कि जो कर्तव्य निष्ठ हो करके योग प्राप्त करना चाहता है उसको प्रत्येक कर्तव्य के पीछे भाव की पवित्रता रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि काम करते समय याद रखना चाहिए कि मेरे इस काम से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। अगर तुम कष्ट नहीं दोगे किसी को अपने काम से तो तुम्हारे काम के द्वारा हमेशा दूसरों को आराम मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो भाव की पवित्रता का अर्थ ये है कि अहित कर काम मत करो, कभी मत करो, किसी के लिए अहित कर काम मत करो। तो लोग ऐसी आशा करने वाले नहीं है, साधक कोटि के लोग हैं, अपनी साधना की दृष्टि से सेवा करते हैं। फिर भी अगर उनके भीतर इतनी सी आशा है कि सब सत्संगी भाई बहन लोग आएंगे और कहेंगे कि वाह और भी सफाई तो बहुत बढ़िया है, करने वाले लोगों ने तो बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छी बिछाई की है, तो अगर इतनी सी प्रशंसा सुनने की आशा भी उनके भीतर है तो इस काम के बदले में योग नहीं होगा। समझ में आया? इससे विश्वास भरोसों है कैसे पता चले? तो अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे में किस पर विश्वास है, तुम्हारे में किस पर भरोसा है, तुम ही जानोगे, हम कैसे कहेंगे। मूक सत्संग में बैठे हुए इष्ट मंत्र की याद आ जाए और इष्ट का विग्रह सामने आ जाए तो इसमें थोड़ी सी चतुराई मालूम होती है साधक की। और वो ये है कि प्रचलित प्रथा है कि शांति काल में जब मन में इधर उधर के विचार आने लग जाएं तो जल्दी जल्दी इष्ट मंत्र का जाप करो और इष्ट का ध्यान करो तो इधर उधर की बातें हट जाएंगी। तो अब मानव सेवा संघ कहता है कि नहीं भाई कुछ मत करो। तो कुछ न करने का, कुछ न करने की तैयारी लेके जो साधक बैठते हैं उनको पुराने अभ्यास के कारण से मंत्र की याद आने लगती है, इष्ट का ध्यान दिखाई आ जाता है, तो इसमें उनको थोड़ा सा विराम मिलता है। वे सोचते हैं कि अच्छा है, अंत संत बातों के आने से इष्ट का विग्रह ध्यान में आ गया तो अच्छा है। तो मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करूंगी कि अपने आप से आ गया तब तो बढ़िया बात है और उसका सहारा पकड़ करके आप व्यर्थ चिंतन को हटाना चाहते हैं तो वो गलत बात है। अब आप अपना फैसला कर लीजिएगा कि सही पर हैं कि गलत पर हैं। और अपने आप आ गए तो कुछ नहीं करना चाहिए, ना उसकी विशेषता मानो, ना उससे क्षति मानो। आवे तो आ जाए और हटे तो हट जाए। और सच्ची बात तो ये है कि अगर आपके इष्ट में आपकी इतनी प्रियता होती तो मूक सत्संग कब को सिद्ध हो गया होता। प्रियता होती तो ध्यान हटता ही नहीं, नाम की विस्मृति होती ही नहीं। तो प्रियता तो नहीं है और अभ्यास है जोरदार। तो अभ्यास वश अगर मंत्र और इष्ट का ध्यान आ रहा है तो आने दो, लेकिन उसका महत्व भी नहीं है, उसको पकड़ो भी मत, उसको हटाओ भी मत, स्वभाव से आ रहा है तो स्वभाव से चला भी जाएगा और मुख सत्संग पक्का रहेगा। असाधन क्या है तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये भी किसी से पूछने की बात है। हाँ, चिंतन किया जाता है और चिंतन होता है, याद किया जाता है और याद आती है। तो मानव सेवा संघ होने वाले चिंतन को और आने वाली याद को महत्व देता है, करने वाले को। मन को दोष देना और मन को प्राकृतिक मान लेना और मन विषय में फंसा हुआ है ऐसा जो मान लेगा उसको तो कभी भी पृथककरण का अनुभव ही नहीं होगा। बड़ा भारी गहन दार्शनिक विषय है और खूब माथापच्ची इस विषय पर की जाती है। मानव सेवा संघ ने एक साथ छुट्टी दिला दी, कहा कि भैया देखो, ब्रह्म में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती और जड़ जगत में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती, मन में मन के विषय लोलुप होने का प्रश्न नहीं है और विषयों में मन का प्रश्न नहीं है, ठीक है ना? इसलिए प्रश्न है मुझ में और फैसला लेना पड़ेगा मुझको और मुझे अपने को पृथक करना पड़ेगा मन से भी और विषयों से भी। तो आप तो पृथक हो सकते हैं, मन से भी पृथक हो जाएंगे, विषयों से भी पृथक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक यंत्र है और मैं इससे काम ले रही हूँ, तो जब तक मुझको ध्वनि को विस्तार करने का संकल्प है तब तक मैंने इसको पकड़ रखा है। तो ये बेचारा यंत्र है, इसको मैंने पकड़ लिया और इसकी सहायता से ध्वनि का विस्तार कर रही हूँ। तो ध्वनि जैसे भौतिक तत्व है, ये यंत्र भी वैसे भौतिक तत्व है, इसलिए दोनों का संयोग बन गया। अब अगर मैं ध्वनि विस्तार की क्रिया से बचना चाहूँ तो इस यंत्र को तोड़ फोड़ के फेंकना पड़ेगा कि अपना संकल्प छोड़ना पड़ेगा जी? अपना संकल्प छोड़ना पड़ेगा। तो जब आदमी शरीर की सहायता से संसार के विषयों का सुख भोगना नापसंद कर देता है तो उसका मन जो है वो संसार की ओर से डिटैच होकर के उस उद्गम में चला जाता है जहाँ से आया था, जिसमें से सारी प्रकृति पैदा हुई उसी में से मन पैदा हुआ, ठीक है ना? तो जब इस मशीन से काम लेने का संकल्प मेरा छूट जाएगा तो संकल्प छूट जाने से मैं मशीन से मुक्त हो जाऊंगी और ये मशीन ध्वनि विस्तार के कार्य से मुक्त हो जाएगी, ठीक है ना? इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये मेरी सत्ता से इसको सत्ता मिली और मेरे संकल्प से इसमें कार्य आरंभ हुआ। मेरा संकल्प खत्म हो गया तो कार्य भी खत्म हो गया और कार्य करने का माध्यम जो यंत्र है उसकी भी जरूरत खत्म हो गई। ऐसे ही हमारे भीतर, आपके भीतर जो मन है यह प्राकृतिक तथ्य है और जब व्यक्ति इस मन के द्वारा संकल्प पूर्ति के साधनों को संसार में जिताने के फेर में पड़ना छोड़ देता है तो जब उसका संकल्प बंद हो जाता है तो मन के साथ संपर्क टूट जाता है। और जो लोग तन से असंग हो जाते हैं, मन से असंग हो जाते हैं, उनके मन की शक्ति जो है वो जा करके उसमें विलीन हो जाती है जिसमें से ये निकली थी। तो साधक जो है उसको पता ही नहीं चलता है कि मन कहाँ गया, कुछ नहीं, मन भी गया और विषय भी गया। हाँ, ये प्रश्न ठीक है। उस स्थिति को लाने के लिए क्या करें कि आज से ही अपने संकल्प का त्याग करें, मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा। शरीर है उसमें शक्ति है, तो पर हित के लिए जो करते बनेगा करूंगा। और जैसे ही करने का समय खत्म होगा, मैं तीनों शरीरों से असंग होकर अपने आप में स्थित रहूंगा। तो मन से मेरा नित्य संबंध नहीं है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तन से मेरा नित्य संबंध नहीं है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप विचार, आप हैं जिसके सामने तन मन की उलझन लगी हुई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी अभी अपने को ब्रह्म स्वरूप मत मानो। ब्रह्म स्वरूप को असंगता की साधना नहीं करनी पड़ती है। ब्रह्म स्वरूप में मन और विषय का प्रश्न नहीं उठता है। तो हम सचमुच ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अपनी भूल से ब्रह्म से भिन्न जो दृश्य जगत है उससे नाता जोड़ लिया। तो जिसने नाता जोड़ लिया उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रह्म को नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खूब सुना है मैंने। स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके वेदांत लोगों की चर्चा करते हैं। मानव सेवा संघ में महाराज जी ने बहुत स्पष्टीकरण कर दिया। आपने जैसे प्रश्न किया ना, ऐसे हम खूब सुने हैं और सब महाराज जी की बातें ही दोहरा रही हूँ। अपनी गांठ लिया है, आप सोच करके देखिएगा, आपके भीतर एकदम वो बातक ज्ञान जिसको कहते थे महाराज, उसने आकर के प्रश्न पैदा कर दिया, शरीरों से असंग कौन होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ब्रह्म स्वरूप को शरीरों से असंग नहीं होना पड़ेगा, लेकिन शरीरों से संग करके मन और विषयों के फेर में जो पड़ गया है उसको शरीरों से असंग होना पड़ेगा। इसीलिए मानव सेवा संघ में दर्शन में ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं होता, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता, मनुष्य शब्द का प्रयोग होता है। मैं मनुष्य हूँ, मेरा आकर्षण संसार की ओर है, मुझ में सत्य की जिज्ञासा है, मुझ में परम प्रेम की अभिलाषा है। तो परमात्मा में अभिलाषा, प्रेम की अभिलाषा मांगनी नहीं पड़ेगी। ब्रह्म में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, अविनाशी में नाश का भय नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने सारे दार्शनिक विवेचन का आधार मैं को माना। इस मैं का स्वरूप क्या है? तो मैं का स्वरूप है कि इसी मैं में जगत का बीज भी है, और इसी मैं में सत्य की जिज्ञासा भी है, और इसी मैं में परम प्रेम की प्यास भी है। तो करना क्या होगा कि संसार के प्रति जो आकर्षण है उस आकर्षण को मिटा देने से सत्य की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, परम प्रेम से तृप्ति हो जाएगी, प्रेम की अनुभूति हो जाएगी आपको। तो ज्ञान और प्रेम से संपन्न होकर के आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप ऐसा सोच के रखिए कि मैं मनुष्य हूँ और मुझ में मन के विषय लोलुप होने की पीड़ा है, तो मुझ पर इनसे असंग होने का दायित्व है। तो पीड़ा भी मुझ में है और उस पीड़ा को दूर करने की क्षमता भी मुझ में है, और पीड़ा को दूर करने का पुरुषार्थ करने का दायित्व भी मुझ पर है। तो जिस पर दायित्व है वो मनुष्य है, जिसमें पीड़ा है वो मनुष्य है, जो पीड़ा मुक्त होना चाहता है वो मनुष्य है। ऐसा अपने स्वरूप का निरूपण करके और आप प्रयत्न आरंभ करिए। तब ये मत पूछिए कि मन से और तन से असंग किसको होना है। अरे भाई, जो फंसा हुआ अनुभव करता है उसको होना है। अब कौन तरीके से होगा, उपाय भी कर लें। तो असंग होने का तरीका ये है कि इसका संग है। मैं थोड़ा अंग्रेजी टर्म और भौतिक विज्ञान साइंस ये सब यूज करूं, आप समझ लेंगे कि छोड़ के करूं, जैसी इच्छा हो तो ठीक है। अब देखिए, न्यूरोलॉजी है, मनुष्य के स्नायु मंडल का वर्णन, तो उसमें ऐसा वर्णन है कि जैसे एक स्नायु की बनावट है उसकी ये शाखाएं हैं, फिर दूसरे स्नायु की बनावट है उसकी ये शाखाएं हैं, और स्नायु में ऐसे ओवरलैपिंग कंडीशन में ये पड़े रहते हैं, तो इनके दोनों में ऐसे रचना में योग नहीं है, अलग अलग है बिल्कुल। और क्या होता है कि जब इधर से कोई स्नायु प्रवाह आया और इधर के स्नायु प्रवाह को पकड़ना है तो दोनों में फंक्शनल रिलेशन हो जाता है, स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है। बस इतना ही है देह की संगता और असंगता में। क्योंकि मैंने शरीर की सहायता से संसार का सुख भोगना पसंद किया तो मेरा अविनाशी तत्व का नाशवान शरीर से स्ट्रक्चरल रिलेशन तो त्रिकार में हो ही नहीं सकता, लेकिन ये फंक्शनल रिलेशन बन गया। मैंने इससे सुख भोगना पसंद किया तो मेरा तादात्म्य हो गया इस आकृति से, और मेरे संकल्पों के फल स्वरूप मेरे सामने दृश्य जगत दिखाई देने लगा। इतना ठोस सत्य है ये कि किसी भी दर्शन का और किसी भी संप्रदाय का मानने वाला साधक मनुष्य के जीवन के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य को इनकार कर ही नहीं सकता। आप द्वैतवादी हैं कि अद्वैतवादी हैं कि विशिष्ट अद्वैतवादी हैं कि क्या आपका दर्शन है तो आप ज्ञानी हैं। मैंने तो विज्ञान के विद्यार्थी की तरह जीवन के सत्य को पढ़ा और आपके सामने मैं प्रकट कर रही हूँ, और आपकी पृष्ठभूमि है इसलिए आप पकड़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिलेशन कभी हुआ ही नहीं भाई, अविनाशी और नाशवान में ये रचनात्मक संबंध संभव कैसे है? कभी नहीं हुआ, त्रिकाल में नहीं हुआ। लेकिन मैंने, अब मैं कहकर संबोधित करूं अपने को, मैंने शरीर की सहायता से बढ़िया बढ़िया वचन बोल करके श्रोताओं को सुनाना पसंद किया तो स्वर यंत्र से मेरा तादात्म्य जुट गया। ये फंक्शनल रिलेशन है। जिस दिन बोलने की वासना खत्म हो जाएगी उस दिन वाणी मूक हो जाएगी। जब बोलना मैं बंद कर दूंगी तो जैसे ही बोलने की वासना छूटेगी स्वर यंत्र से तादात्म्य भी तत्काल टूट जाएगा। तो गया तो सब एक साथ गया। फिर कर्म की वासना गई तो कारक अंगों से संबंध टूट गया। चिंतन की आवश्यकता खत्म हुई तो सूक्ष्म शरीर से संबंध टूट गया। फिर कारण शरीर की स्थिति की शांति में भी ठहरना मैंने पसंद नहीं किया तो सीमित अहम भाव की सीमा लुप्त हो गई। तो जब मैं की शुद्ध की शुद्ध अहम की परिच्छिन्नता का नाश हो जाता है तो वहाँ शुद्ध अद्वैत रह जाता है। फिर दृश्य जगत की स्थिति ही बाधित नहीं होती, रहता ही नहीं है, ऐसा लुप्त होता है कि जैसे कि कभी था ही नहीं। इसके थ्रू हो गया आपको चलना। करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, खास पीरियड उसका नहीं होगा। पापा देखिए, वहाँ चित्रकूट की सभा है और भरत लाल जी भीतर से दिल में कितनी बातें भर के गए हैं कि रघुनाथ जी को सुना दूंगा, और तो कोई बूझेगा नहीं। नगर के लोग तो कहेंगे कि अरे इसी ने षड्यंत्र किया होगा, अब झूठ मूठ को रो रहा है। तो नगर के लोग तो ये कहेंगे, तो जिसके जो जी में आए कहे फाड़ में जाए संसार, मेरे तो एक रघुनाथ जी अपने हैं और उनके बिना मेरे जी की बात और कोई समझेगा पूछेगा नहीं, इसलिए मैं जाता हूँ, मैं उनको सब सुना दूंगा। चले गए, पहुँच गए, दंड प्रणाम कर लिया, दोनों भाई मिले तो गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम पूरण दो भाई, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई। खत्म हो गया ना, मुख खत्म हो गया, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई, अहम भी डूब गया। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, दोनों भाई परम प्रेम से पूर्ण हैं, और जब एक दूसरे को मिले तो क्या हो गया, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई, सब खत्म हो गया। बड़ी देर लग गई इसमें। उसके बाद जब दोनों बैठे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कोऊ किछु पूछे ही ना, कोऊ किछु कहाई ना, कोऊ किछु पूछा, ठीक है, कोऊ किछु कहाई ना, कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगति पूछा। योग हो गया ना, मुख सत्संग हो गया, तो आसन लगा के दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके साउंड प्रूफ रूम बना के करना पड़ा नहीं, हृदय में रक्त उमड़ा और हो गया। कोई किछु कहाई न कोई किछु पूछा, भरत लाल को कितना कहना था रघुनाथ जी से और रघुनाथ जी को कितना पूछना था भरत लाल से, भैया कुशल समाचार बताओ, भैया नगर की बात बताओ, भैया माता पिता की बात बताओ, कितना समाचार उनको पूछना था। कोई किछु कहाई न कोई किछु पूछा, ना कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है, क्या हो गया, प्रेम भरा मन निज गति पूछा। वहाँ गति है नहीं, वहाँ नित्य योग है। प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर के उस रस में खो गए। गोस्वामी जी तो बड़े मर्मज्ञ हैं ना, तो पहले ही कह रहे हैं मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई, अहमिति बिसर गई। तो अब कौन कहेगा, कौन पूछेगा, मुख सत्संग सिद्ध हो गया। अगर देने की चेष्टा करिएगा तो अप्रयत्न नहीं हो सकिएगा, अप्रयत्न रहेगा तो अहम का नाश नहीं होगा, इसलिए चेष्टा मत करो। अरे भाई मन के पीछे क्यों पड़ते हो, बेचारे को सांस को लेने को छोड़ दो, और बार 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 तरह तरह के चित्र सामने आते हैं तो आएंगे चले जाएंगे, आप परवाह मत करिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अकेले तो होइए। तो अभी जैसे उन भाई के प्रश्न के उत्तर में कहा मैंने कि अनेक प्रकार के संकल्पों को अपने भीतर रख करके और मन को हम लोग शांत करना चाहते हैं, कैसे होगा भाई, पहले तुम अपने संकल्पों का त्याग तो करो। तो संकल्प नहीं रहेंगे तो मन का कार्य खत्म हो गया, मन का कार्य नहीं रहा तो बुद्धि का कार्य खत्म हो गया। तो अपने आप करिए, समस्ती शक्तियां शांत हो जाएंगी। तो होने देते नहीं और कहते हो कि होता नहीं है, होने कहां देते, होने दीजिए। हाँ तो कहा
हाँ।
लेकिन उनका बोलना न बोलने के समान था, बोलते हुए भी वे भीतर से एकदम निश्चिंत होते थे, क्रिया से उनका कोई संबंध नहीं होता था। स्वामी जी महाराज जब स्वराज के आंदोलन में खूब नारा लगा रहे थे विदेशी शासन को उठाने के लिए और पिकेटिंग कर रहे थे और जेल जा रहे थे, तो स्वामी जी महाराज की उम्र तो बहुत छोटी थी, जल्दी संन्यास ले लिए थे। तो महाराज जी के गुरु महाराज के एक मित्र थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो उनके पास आए, उनकी पीठ सहलाई, खूब प्यार किया और कहा कि बेटा क्या तुमने इसीलिए संन्यास लिया था? तो महाराज जी ने कहा नहीं महाराज। तो ये तू क्या कर रहा है? तो कहा कि देश की सेवा का राग नहीं छोड़ सका तो करके मिटा रहा है। और तुम्हारी दशा क्या है? तो एकदम अट्ठहास करके कहते हैं मैं त्रिकाल में भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपनी अखंडता में विराजमान हूँ। तो हमारे भीतर जो बोलने का संकल्प है वो तो मेरे राग के परिणाम से है, और श्रोता के रूप में उन्हीं ने मुझको ये अवसर दिया उपस्थित होकर के कि बोल लो, हितकर वाणी बोल लो, प्रिय वाणी बोल लो, सत्य वाणी बोल लो, और बोलने का राग खत्म करके न बोलने की स्थिति में पहुंच जाओ। तब क्या होगा कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा। कुछ करने के राग ने मुझको शरीर से बांध रखा है, करने का राग समाप्त हुआ तो शरीर से तादात्म्य टूट गया। तो मैंने महापुरुषों को देखा है कि वे अपनी असंगता में आप मस्त रहते हैं, और जब किसी दुखी जन की पीड़ा में शामिल होना होता है तो शरीर के रूप में इस यंत्र को पकड़ लेते हैं और काम कर लिया और छोड़ करके फिर अपनी असंगता में डूब गए। तो राग निवृत्ति के बाद अगर प्रवृत्ति होती है तो वो केवल पर पीड़ा से द्रवित होते होती है, दूसरों के संकल्प में शामिल होने के लिए होती है, उन प्रवृत्तियों से त्रिगुणातीत पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हुई थी। मैंने संसार का आकर्षण भी है, मैंने सत्य की खोज भी है और उसी में परम प्रेम की प्यास भी है। तो जो सत्य के संबंध में जिज्ञासा रखता हो, जो अनंत परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा रखता हो और साथ ही संसार के सुखों की ओर भी आकर्षित रहता हो, उसका नाम है मैं। तो ये मैं का स्वरूप है। अब फिर साधना के फल से क्या होता है? तो साधना के फल से एक विशेष बात यह होती है कि भूल से उत्पन्न हुआ संसार के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण का नाश हो जाता है। तो संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है, तो सत्य की जिज्ञासा पूरी हो जाती है, तो प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान और प्रेम हमारा निज स्वरूप है। ज्ञान से अभिन्न होकर, प्रेम से अभिन्न होकर सीमित अहम भाव का लोप होता है। तो सीमित अहम भाव से निकलने के बाद हमारी सोचों से अभिन्नता हो जाती है। ये तो है साधना का फल। और गोस्वामी जी के वचनों को जो कभी मैंने दोहराया, तो उसमें यह उद्देश्य था बताने का कि जब ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होकर, प्रेम स्वरूप से अभिन्न होकर सीमित अहम भाव का लोप हो जाता है, जब मैं हूँ ऐसा जो अपना एक भास हो रहा है, तो जब तक यह भास बना रहता है कि मैं हूँ, तब तक दिखाई देता है कि ये जगत है, तब तक खोज रहती है कि सत्य क्या है। तो संसार की आसक्ति के त्याग के बाद जब अहम शुद्ध होता है, आसक्ति से उपजने वाले विकारों का नाश हो जाता है, तो उस शुद्ध अहम में यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपनी सीमा को तोड़कर अहम भाव का नाश करके ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप से अभिन्न हो जाए। तो जब ज्ञान स्वरूप सत्य से, जब प्रेम स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता हो जाती है, तब वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहाँ क्या होता है, तो वो तो अनुभव की बात है। वर्णन करने की चर्चा केवल इतनी सी है कि संसार की आसक्ति मिटी नहीं कि दृश्य जगत मुक्त हो जाता है। ये मैं हूँ और ये संसार है, ये द्वैत का भास खत्म हो जाता है। तो जो ज्ञान पंथ के साधक होते हैं, वो ज्ञान स्वरूप मैं ही हूँ ऐसा करके मान लेते हैं। तो जो सत्य है, जो नित्य तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परम तत्व है, वह मुझ में ही है, मैं ही हूँ ऐसा करके वे लोग मान लेते हैं। और जो ईश्वर विश्वासी हैं, वे अपने सहज स्वरूप को प्रेम के धातु में परिवर्तित हुआ पा करके प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाते हैं। तो चाहे ज्ञान स्वरूप होकर सत्य से अभिन्न हो जाओ, चाहे प्रेम स्वरूप होकर सत्य से अभिन्न हो जाओ, अहम की सीमा खत्म हो जाती है। ये होता है स्वरूप। अचार से क्या तात्पर्य है? अचार का अर्थ है कुछ नहीं जानना। तो हम लोग क्या चाहते हैं? तो संसार से कुछ चाहते हैं तो उसका नाम चाह होता है। जैसे आराम से रहने की जगह चाहिए, ठीक समय पर भोजन चाहिए, प्रेम पूर्वक गपशप करने के लिए मित्र मंडली चाहिए, मुझको आदर सम्मान देने के लिए समाज चाहिए, ये सब मनुष्य की भूख है। स्थूल शरीर को खुराक चाहिए, अन्न जल इत्यादि चाहिए। सूक्ष्म शरीर को मान बड़ाई प्रशंसा चाहिए, चिंतन चाहिए, संगति चाहिए, कंपनी चाहिए, मित्रता इत्यादि। और इन शरीरों में फंसे हुए को सुख सुविधा सम्मान सब चाहिए। तो इन तीनों का संबंध, सुख का, सम्मान का, सुविधा का, इन तीनों का संबंध संसार से है। संसार से कुछ चाहिए तो वो चार कहलाता है। और संसार से अपने को कुछ कुछ मिला हुआ है, तो संसार में जो दिया है उसका उपयोग करो तो साधन कहलाता है। तो प्राप्त सुख सुविधा सम्मान की परिस्थिति का सदुपयोग करो तो वो साधन कहलाता है, और अप्राप्त की चिंता में लगे रहो वो चाल कहलाती है। प्रश्नकर्ता भाई सुन रहे हैं? प्रश्नकर्ता कौन है? तो ये चाल हो गई। अब कहा जा रहा है कि अच्छा हो जाओ, अर्थात अप्राप्त का चिंतन छोड़ दो। अप्राप्त का जितना खाने पीने को शरीर की सेवा के लिए उपलब्ध है उसमें से उचित मात्रा में शरीर की सेवा की दृष्टि से शरीर को अर्पण कर दो तो इसमें कोई भूल नहीं है। लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भीतर से रह रहे के बात उठती रहे कि क्या बताएं, ऐसा भोजन मिलता तो ठीक था, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो ये कहलाता है अप्राप्त का चिंतन। तो जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग साधन है, और जो प्राप्त नहीं है उसके बारे में सोचते रहना, उसकी आवश्यकता अनुभव करना, ये चाह है। तो चाह को छोड़ देना है। तो भाई हमारे कह रहे हैं कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो देखिए कि अप्राप्त के चिंतन से न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं, कर्तव्य पालन से शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में रहो, निकटवर्ती जन समुदाय के काम आने को सोचो तो शरीर की न्यूनतम आवश्यकताएं विधान के अनुसार स्वतः ही पूरी होंगी, और काम आने की बात न सोचो तो मस्तिष्क में से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता मिटेगी नहीं। और सच्ची बात ये है कि जो अचाह हो गए तो अचाह पुरुषों की न्यूनतम आवश्यकताएं शरीर की, अपनी तो क्या करेगा कोई, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का इंतजाम प्रकृति की ओर से होता है, विधान की ओर से होता है, समाज की ओर से होता है। अचाह पुरुषों को सोचना नहीं पड़ता है कि अब संध्या समय मुझे भूख लगेगी तो क्या होगा। जो अचाह होते हैं वे शरीर की जो बहुत ही आवश्यक बातें हैं उनकी पूर्ति की भी वे परवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उसमें भी अपने अविनाशी जीवन की साधना में बाधा मालूम होती है, इसलिए वे परवाह नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि भाई अगर इस शरीर को रखना प्रकृति को मंजूर होगा तो भोजन आएगा ही समय पर, और आएगा तो हम अर्पण कर देंगे। अगर इस शरीर को रखना समाज के लिए उपयोगी होगा तो समाज खुद ही इसकी फिक्र करेगा। परिवार के लिए अगर ये शरीर आवश्यक है तो परिवार के लोग खुद ही चिंता करेंगे, तो करेंगे, खिला देंगे तो खा लिया जाएगा, ला करके दे देंगे तो शरीर को अर्पण कर दिया जाएगा, और नहीं तो अपने को कोई जरूरत नहीं है। इतना सार रखे आरंभ में रखना पड़ेगा। और पीछे तो मैंने देखा है, कई संतों के बारे में देखा है, सुना है कि वे चाहते कुछ नहीं है, यहाँ तक कि शरीर को भूख के समय भोजन देना चाहिए इसके बारे में भी वो सोचना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो अपने जीवन का लक्ष्य है, अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने का जो लक्ष्य है उसमें बाधा पड़ेगी, तो वे परवाह ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। और सचमुच ऐसे जो अचाह पुरुष होते हैं उनकी चाह, उनके शरीर की जरूरतों की पूर्ति प्रकृति स्वयं करती है, परमात्मा स्वयं करते हैं। ऐसा मैंने संतों भक्तों के जीवन में सुना है, पढ़ा है, तो महाराज जी के लिए तो मालूम ही है, ऐसा होता ही था। सुमत प्रकाश सिंघल दिल्ली के रहने वाले सज्जन हैं, स्वामी जी महाराज के साथ हमेशा शुरू शुरू में यात्रा किया करते थे। तो गऊ के संबंध में, गऊ सेवा के संबंध में कुछ बात एक बार हुई थी, समाज में उठी थी, तो महाराज जी ने वृंदावन से अहमदाबाद की ओर जाते हुए ट्रेन में ये तय कर लिया कि अब हम केवल गऊ के दूध का प्रयोग करेंगे, भैंस का दूध नहीं लेंगे, नियम बना लिया। तो सुमंत भाई कह रहे थे कि हमने कहा कि स्वामी जी रास्ते में जितने लोगों को पत्र लिखा गया है पहले से कि महाराज के लिए दूध फल ले आना, तो किसी को नियम नहीं लिखा गया है, क्योंकि पहले तो नियम आपका था ही नहीं। तो अब रास्ते में आपने नियम ले लिया तो कैसे बनेगा, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो पहुंच जाए हम लोग जगह तक तो हम सबको बता देंगे, सब ऐसा आप निभाइएगा। तो महाराज ने कहा कि तुम चुपचाप रहो, जाके बैठो, तो तुम क्लास में बोलो मत, भेज दिया हम लोग चले गए। तो सुमति कहे कि मेरे जी में तो ऐसी तकलीफ पैदा हुई कि आज मैं स्वामी जी महाराज को भूखा कैसे रखूंगा, पिलाऊंगा कैसे दूध, रास्ते में तो आएगा तो पता नहीं गाय का आएगा भैंस का आएगा, किसी की सुविधा नहीं गया है। तो चुपचाप जाकर के बैठ तो गए, लेकिन बेचारे को बहुत छटपटी कि अब क्या करें, महाराज जी तकलीफ में रहेंगे, इनको कैसे दूध पिलाऊंगा। तो कह रहे थे कि मेहसाना एक स्टेशन है, उस स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उस ट्रेन में दूसरी जगह पर दूसरे संत लोग बैठे थे दूसरे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और भक्तों के यहाँ से घर की गाय का दूध और खूब केसर और मेवा और मिश्री सब डाला हुआ, पकाया हुआ, इतना बड़ा बड़ा चांदी का लोटा पात्र उसमें भर भर के स्टेशन पर आया होगा। इनको क्या पता, ये तो सेकंड क्लास में से दौड़ के आके हम महाराज के पास खड़े थे। अब सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, अब दूध पीने का समय है, अब क्या पिलाएंगे। तो दूसरे लोग लेकर के आए दूसरे संतों को पिलाने के लिए, तो उन संतों ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर और आगे बढ़ो, दूसरा एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उसमें एक प्रज्ञा चक्षु संत बैठे हैं, ये पात्र लेकर के जाओ और उनको पहले पिलाओ, और जितना वो पी सके उतना पिला देना, जो बाकी बचे सो वापस ले लेना, तब हम लोग पिएंगे। ऐसा कहकर उन संतों ने भेज दिया। तो सुमती स्वामी जी महाराज के पास खड़े थे और असमंजस में थे कि अब कैसे करें क्या करें। इतनी देर में उस स्टेशन पर संतों के भेजे हुए लोग लोटे में खूब गाय के घर की गाय का दूध और बढ़िया पकाया हुआ सब ला करके हाजिर किया उनके पास। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि आप लोगों को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ से आए हो भाई, किसने भेजा है। तो तीन चार जने थे, वे लोग संत के भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज हमारे महाराज जी लोग उधर दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे हैं, वे लोग जा रहे हैं, तो उनका नियम है केवल गाय का दूध पीने का, उनके लिए हम लोग घर की गाय का दूध बना के लाए थे, और उनको पिलाने के लिए जब पहुंचे हम तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। तो समझे महाराज को समझ गए कि किसने भेज दिया, कैसे आ गया, उनके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। तो अपना ग्लास निकलवाया सुमत जी से और जितना पीने का था उतना पी लिया और बाकी भेज दिया। तो दूध इतना ज्यादा था कि वो चार पांच छह संत जितने थे सबको पिला करके भी वो खत्म होने वाला नहीं था, बहुत था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी सुमंतों के पास बहुत दूध है, इस लोटे में जो बचा है और आप ले लीजिए, और आप ले लीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने सुमत जी को तो पहले खूब चिटकाया, कहने लगा कि कहो बेटा कहाँ से इंतजाम किए, ऐसे ऐसे करके हंसी बात बनाए। फिर उन्होंने कहा कि तूने जा करके उन लोगों को कुछ कह तो नहीं दिया। तो सुमत जी बोला कि नहीं महाराज, उनको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो इसी चिंतन में बैठते थे कि अब कहाँ से लाइन जा सकते। तो कहा कि अच्छी बात, तुम भी पियो, चलो अब तो सरकारी इंतजाम है ना, अब उसमें कमी क्या है, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सुमत जी बताते हैं कि ग्लास भर भर के स्वामी जी महाराज ने मुझको भी पिला दिया, उस दूध में जो स्वाद था जो मिठास था वो जिंदगी में कभी कभी मैंने किया नहीं था, न उसके पहले न उसके बाद, आज तक कभी मिला ही नहीं। तो श्रीमती को भी खिला दिया, अपने भी पी लिया, बाकी लेकर के वो लोग चले गए। और जो हम लोग बैठे हुए थे दूसरी जगह फर्स्ट क्लास में, उनको खिला के लेकर के कर लिया काम। तो एक उदाहरण नहीं, ऐसे मैं अनेक उदाहरण रख सकती हूँ। स्वामी जी महाराज को तो हम लोगों ने नजदीक से देखा ही है, जाना ही है। बाइबल में मैंने महात्मा ईसा के जीवन में पढ़ा है कि जब उनको दीक्षा दी गई, उनका बपतिस्मा कराया गया, भगवान के साथ पिता का संबंध जोड़ने का उनका एक रस्म होता था। गांव में जो नदी की धारा बहती थी, उस नदी में शिष्य होने वाले को स्नान करवाया जाता था और यहाँ पर तिलक कराया जाता था। और जल से जो भी कुछ होता था सब हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक बात है, अब पिता का काम करने की घड़ी आ गई है, तो पहले मैं उससे प्रार्थना को कर लूँ, पहले उससे पूछ को लूँ कि मुझे क्या क्या करना है और वो कैसे कैसे कराएगा। तो ऐसा सोच करके वे शमशान निर्जन स्थान में एक पर्वत की चट्टान के नीचे जा करके घुटने टेक करके प्रार्थना करने बैठे। तो प्रार्थना में पिता की सन्निधि के आनंद में वे ऐसे मस्त हो गए कि 40 दिनों तक उनका ध्यान ही नहीं छूटा। तो ये लिखा हुआ है कि वो घुटने टेक करके और अपने पिता के अनुराग में जो जो जी में आता था तो सब भगवान को सुनाते जाते थे और प्रेम के उसमें आवेश में अश्रुपात होता रहता था, बातें होती रहती थी, जो जो जी में आता था करते रहते थे। ऐसा करते करते सुबह की शाम हो जाए, शाम का सवेरा हो जाए, तो गांव से नगर से बस्ती में से कौवा पक्षी घरों से रोटी के टुकड़े मुख में सूंघ में पकड़ करके ले आते और ईसा के पास कर्म की वासना गई तो कारक अंगों से संबंध टूट गया। चिंतन की आवश्यकता खत्म हुई तो सूक्ष्म शरीर से संबंध टूट गया। फिर कारण शरीर की स्थिति की शांति में भी ठहरना मैंने पसंद नहीं किया तो सीमित अहम भाव की सीमा लुप्त हो गई। तो जब मैं की शुद्ध अहम की परिच्छिन्नता का नाश हो जाता है तो वहाँ शुद्ध अद्वैत रह जाता है। फिर दृश्य जगत की स्थिति ही बाधित नहीं होती, रहता ही नहीं है, ऐसा लुप्त होता है कि जैसे कि कभी था ही नहीं। इसके थ्रू हो गया आपको चलना। करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, खास पीरियड उसका नहीं होगा। पापा देखिए, वहाँ चित्रकूट की सभा है और भरत लाल जी भीतर से दिल में कितनी बातें भर के गए हैं कि रघुनाथ जी को सुना दूंगा। और तो कोई बूझेगा नहीं, नगर के लोग तो कहेंगे कि यार इसी ने षड्यंत्र किया होगा, अब झूठ झूठ को रो रहा है। तो नगर के लोग तो ये कहेंगे। तो जिसके जो जी में आए कहे फाड़ में जाए संसार, मेरे तो एक रघुनाथ जी अपने हैं और उनके बिना मेरे जी की बात और कोई समझेगा पूछेगा नहीं। इसलिए मैं जाता हूँ, मैं उनको सब सुना दूंगा। चले गए, पहुँच गए, दंड प्रणाम कर लिया, दोनों भाई मिले तो गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम पूरण दो भाई, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई। खत्म हो गया ना, मुख खत्म हो गया, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई, अहम भी डूब गया। परम प्रेम पूरण दो भाई, दोनों भाई परम प्रेम से पूर्ण हैं और जब एक दूसरे को मिले तो क्या हो गया, मन चित बुद्धि अहमिति बिसराई, सब खत्म हो गया। बड़ी देर लग गई इसमें। उसके बाद जब दोनों बैठे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कोऊ किछु पूछे ना कोऊ किछु कहे ना कोऊ किछु पूछा ठीक है कोऊ किछु कहे ना कोऊ किछु पूछा प्रेम भरा मन निजगति पूछा योग हो गया सत्संग हो गया तो आसन लगा के दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके साउंड प्रूफ रूम बना के करना पड़ा नहीं हृदय में रक्त उमड़ा और हो गया कोई किछु कहा न कोई किछु पूछा भरत लाल को कितना कहना था रघुनाथ जी से और रघुनाथ जी को कितना पूछना था भरत लाल से भैया कुशल समाचार बताओ भैया नगर की बात बताओ भैया माता पिता की बात बताओ कितना समाचार उनको पूछना था कोई किछु कहा ही ना कोई किछु पूछा ना कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है क्या हो गया प्रेम भरा मन निज गति पूछा वहाँ गति है नहीं वहाँ नित्य योग है प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर के उस रस में खो गए गोस्वामी जी तो बड़े मर्मज्ञ हैं ना तो पहले ही कह रहे हैं मन चित्त बुद्धि अहमिति बिसराई अहमिति बिसर गई तो अब कौन कहेगा कौन पूछेगा मुख्य सत्संग सिद्ध हो गया अगर देने की चेष्टा करिएगा तो अप्रयत्न नहीं हो सकिएगा अप्रयत्न रहेगा तो अहम का नाश नहीं होगा इसलिए चेष्टा मत करो अरे भाई मन के पीछे क्यों पड़ते हो बेचारे को सांस को लेने को छोड़ दो उसको और बार 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 तरह तरह के चित्र सामने आते हैं तो आएंगे चले जाएंगे आप परवाह मत करिए छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए अकेले तो होइए तो अभी जैसे उन भाई के प्रश्न के उत्तर में कहा ना मैंने कि अनेक प्रकार के संकल्पों को अपने भीतर रख करके और मन को हम लोग शांत करना चाहते हैं कैसे होगा भाई पहले तुम अपने संकल्पों का त्याग तो करो तो संकल्प नहीं रहेंगे तो मन का कार्य खत्म हो गया मन का कार्य नहीं रहा तो बुद्धि का कार्य खत्म हो गया तो अपने आप करिए सुनक्षी शक्तियां शांत हो जाएंगी तो होने देते नहीं और कहते हो कि होता नहीं है होने कहां देते होने दीजिए हाँ तो
हाँ।
लेकिन उनका बोलना न बोलने के समान था बोलते हुए भी वे भीतर से एकदम निश्चिंत होते थे क्रिया से उनका कोई संबंध नहीं होता था स्वामी जी महाराज जब स्वराज के आंदोलन में खूब नारा लगा रहे थे विदेशी शासन को उठाने के लिए और पिकेटिंग कर रहे थे और जेल जा रहे थे तो स्वामी जी महाराज की उम्र तो बहुत छोटी थी जल्दी संन्यास ले लिए थे तो महाराज जी के गुरु महाराज के एक मित्र थे उन्होंने देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है तो उनके पास आए उनकी पीठ सहलाई खूब प्यार किया और कहा कि बेटा क्या तुमने इसीलिए संन्यास लिया था तो महाराज जी ने कहा नहीं महाराज तो ये तू क्या कर रहा है तो कहा कि देश की सेवा का राग नहीं छोड़ सका तो करके मिटा रहा हूँ और तुम्हारी दशा क्या है तो एकदम अट्ठहास करके कहते हैं मैं त्रिकाल में भी कुछ नहीं करता हूँ मैं अपनी अखंडता में विराज हूँ तो हमारे भीतर जो बोलने का संकल्प है वो तो मेरे राग के परिणाम से है और श्रोता के रूप में उन्हीं ने मुझको ये अवसर दिया उपस्थित होकर के कि बोल लो हितकर वाणी बोल लो प्रिय वाणी बोल लो सत्य वाणी बोल लो और बोलने का राग खत्म करके न बोलने की स्थिति में पहुंच जाओ तब क्या होगा कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा कुछ करने के राग ने मुझको शरीर से बांध रखा है करने का राग समाप्त हुआ तो शरीर से तादात्म्य टूट गया तो मैंने महापुरुषों को देखा है कि वे अपनी असंगता में आप मस्त रहते हैं और जब किसी दुखी जन की पीड़ा में शामिल होना होता है तो शरीर के रूप में इस यंत्र को पकड़ लेते हैं और काम कर लिया और छोड़ करके फिर अपनी असंगता में डूब गए। तो राग निवृत्ति के बाद अगर प्रवृत्ति होती है तो वो केवल पर पीड़ा से द्रवित होते होती है, दूसरों के संकल्प में शामिल होने के लिए होती है, उन प्रवृत्तियों से त्रिगुणातीत पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।